संकेत कर रहा है कि जैसे हम लोगों के समक्ष भी भगवान का अवतरण होने वाला है, देवाश्नी आने वाली है, तो इस पक्ष को अब देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हमारे प्रभु का अवतरण होने वाला है। और आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भगवान की भगवत्ता को देख करके उनसे देश करने की स्थिति में अपने को रखे हुए हैं। तो आइए हम लोग आज के श्लोक का उच्चारण करें, तत्पश्चात श्लोक के ऊपर हम लोग विचार करेंगे भगवान जी के तात्पर्य के अनुसार। ब्लैक बोर्ड पर 32 नंबर श्लोक लिखा हुआ है, कृपया करके आप लोग मेरे पीछे बोलिए, सता अवधूता परापतन ग्रहा च तद्दृष्टे मुष्ट रोचिस अभ्योदय स्वासहता विचुक्षु निरहादेता दिव्या विचुक्रुषु
नृसिंह देव के सिर के बालों से बादल
गिर कर इधर उधर बिखर गए। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज बलवंत पड़ गया और उनके स्वास्थ्य से समुद्र क्षुब्ध हो उठे। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से सिंघाड़ने लगे। इस श्लोक के अंदर भगवान नरसिंहदेव के उस स्वरूप का चित्रण हुआ है कि जिस स्वरूप से भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप का वध किया और हिरण्यकश्यप के वध करने के बाद उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के बाद अपनी आंखें अपनी इधर उधर घुमाए। जो हिरण्यकश्यप के अनुचर थे अखबार में लिखते हैं कि जो हिरण्यकश्यप के स्वामी भक्त थे उनको मारने की दृष्टि से हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात नरसिंहदेव ने अपनी गर्दन इधर उधर घुमाया करके दृष्टि डाली दूसरे के ऊपर। तो पहले तो उनके आवाज से ही सारे वैदिक हो चुके थे, लेकिन फिर यथा तथा वो भाग रहे थे। नरसिंहदेव ने छोड़ा नहीं, उनको भी अपने नथ के द्वारा छत विछत कर दिया। अब इस श्लोक के अंदर भगवान के उस स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। भगवान के बाल, भगवान के देखने की दृष्टि और भगवान के उस स्वरूप का चित्रण किया जा रहा है जिसके तेज को देख करके समुद्र जैसे विशाल जलद जलद बादल को भी कहा जाता है और जलद शब्द से समुद्र का भी संकेत होता है। समुद्र का भी पर्यायवाची शब्द जलद है, जलद भाव केवल एक अक्षर का फर्क। जलद और जलद, जलद से बादल और जलद जो धारण करता है, इतनी वृष्टि होती है जिसको रोकता है उसको जलद कहते हैं समुद्र। समुद्र जैसा विशाल जलधि भी विक्षुब्ध हो गया तो नरसिंह भगवान के क्रोध रूपी दृष्टि को देखते हैं। रामायण में भी हम लोग पढ़ते हैं भगवान राम ने 3 दिवस तक समुद्र से पार जाने के लिए रास्ता मांगा। 3 दिवस तक पंत मांगते रघुपति सिंधु किनारे। जब समुद्र नहीं सुना तो भगवान राम ने न केवल भौरे टाइप किया, आंख को ऊपर किया, उस दृष्टि को न सहन कर पाए समुद्र देवता। वरुण देव जी प्रकट हुए और जितने भी समुद्र के अंदर जीव थे वो व्याकुल हो गए। वह स्वरूपगत स्थिति यहां हो रही है। नरसिंहदेव के देखने की दृष्टि से विक्षुब्ध समुद्र हो गए और उनके शरीर के तेज से प्रकाश से मतलब जो इस जगत का जो चकाचौंध होता है प्रकाश था वो मंद पड़ गया। इससे यह संकेत कर रहे सुखदेव गोस्वामी कि भगवान के भगवत्ता के समक्ष इस संसार का कोई भी वस्तु तुलनीय नहीं है। एक कवि ने लिखा है कि भगवान के सुंदरता का वर्णन श्री श्री राधा राधिकावन जी की, श्री श्री कृष्ण राम की, श्री गोविंदाय की, जगन्नाथ कृष्णा महाराज की। एक कवि ने लिखा है कि अगर भगवान की सुंदरता की तुलना अगर इस संसार के किसी भी सुंदर वस्तु से की जाती है तो यह सोचना चाहिए कि और संकेत किया जा रहा है उसके बराबरी का वो चीज नहीं। इसलिए कोई भी उदाहरण दिया जाता है भगवान के किसी भी स्वरूप का साधन करने के लिए तो भगवान के साक्षात उस स्वरूप में और किसी तुलनीय वस्तु के स्वरूप में और इसका आभास जो भगवत भक्त है, जो दैवी प्रकृति के लोग है, वही इसका आभास कर पाते हैं। और लोग भागवत के अंदर बार बार पढ़ते हैं कि जब भी देवताओं के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आई तो भगवान के शरण को उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन आसुरी प्रकृति के लोग अपने शारीरिक बल और संसारिक भौतिकता के बल पे भगवान को स्वभावता को स्वीकार नहीं किया। इसलिए भगवान की भगवत्ता को समझने में सहायता होती है दैवी प्रकृति। जो देवताओं की भक्ति है वह भी हमारी भक्ति करने में सहायता प्रदान करती है। लेकिन हम देवताओं से भक्ति मांगे तब हम लोग अपने को इतना उत्कृष्ट भक्त समझ लेते हैं। लोग कहते हैं कि क्या शिव की भक्ति करके, क्या हनुमान की भक्ति करें। भक्ति करो, भक्ति करके उनसे उनके हृदय की भाव मांगो कि जिस भाव से आप भगवत प्राप्ति कर सके, या आप जिस भाव हृदय की भावना से भक्ति आप कर रहे हैं वो भाव मैंने कर दी। इसलिए हम सर्व कह सकते हैं कि मनुष्यों से कोटि गुना कुछ स्थिति है देवताओं की। क्रिया ना हम करें कि भगवान को छोड़कर के देवताओं की भक्ति करना शुरू करें। हम भक्ति मांग सकते हैं। हम लोग जो वंशा करते हैं, जो प्रणाम करते हैं भक्तों को, तो क्या करते हैं? ये साधु करो, कृपा करो कि भगवान की भगवत्ता को समझ पाए, भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाए। तो साधारण मनुष्यों से तो कोटि गुना देवता अच्छे हैं। जब भी उनके जीवन में किसी भी प्रकार की अंधेपन की मार्ग दिखाई दिया तो उन्होंने भगवान को, भगवान की सराहना को उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए इनको दैवी प्रकृति के दरकार देवता की कंठरी में रखा जाता है। भागवत के एक श्लोक में वर्णन है कि जो भगवान के शुद्ध भक्ति के पथ पर जो भक्त चलते हैं उनके अंदर देवताओं के सभी दैवी गुण उनके अंदर आ जाते हैं। इसलिए उस गुण को हासिल करने के लिए हम सबसे आशीर्वाद को ले सकते हैं। जरूरत है, जब तक भक्त सहायता नहीं करते तब तक भगवान की हिम्मत नहीं है कि भगवान किसी भक्त के सामने समक्ष आ जाए। भक्त की कृपा पर भगवान के निर्भर। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी दिवस है, उनके जीवन चरित्र को हम पढ़ेंगे, कितनी एक निष्ठा के साथ उन्होंने भक्ति किया। जब तक किसी साधु की शरणागति में या किसी साधु की संगति में भक्ति करने का प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान कभी नहीं समझ सकते। इसलिए यह जरूरी चीज है कि भगवान की भगवत्ता की संसारिक स्थितियों से तुलना करके हम उसको संकेतिक भाषा में समझे। लेकिन भगवान की दिव्यता के स्तर को समझने के लिए पूर्ण रूप से एक शुद्ध भक्ति की शरण लेनी है। द्रौपदी जी छोटा सा तात्पर्य लिखे, उसके अंदर संकेत उन्होंने किया है श्री प्रभुपाद महाराज की। एक श्लोक उद्धृत करते हैं, प्रभुपाद रिपोर्ट करते हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय का। जैसे कि भगवान ने भगवद गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, यद्यत् भूतिवत् सत्त्वं श्रीमद् जितमेव तद् तद् एव गच्छन्त्वं मम तेजो असंभवम्। तुम जान लो कि समस्त सुंदर गौरवशाली तथा शक्तिशाली दृष्टि से शक्तिशाली सृष्टि मेरे तेज के स्फुलिंग से ही प्रकट होती है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंदर भगवान ने सब कुछ बताया कि मैं प्रकाश में ये हूँ, मैं शक्तियों में ये हूँ, देवताओं में ये हूँ, असुरों में ये हूँ, मात्र से केवल सांकेतिक दृष्टि से अगर प्रकाश का एक अंश इस जगत को प्रकाशित करने में सर्वसमर्थ है, क्योंकि कृष्ण की मतलब शरीर की कांति स्वरूप आया प्रकाश दिख रहा है, संसार दिख रहा है, उन्हीं के द्वारा प्रदत्त सारी वस्तु दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अगर इस सृष्ट जगत में से केवल भगवान की शक्ति को निकाल दिया जाए, भगवान की कृपा को निकाल दिया जाए, तो ये जगत शून्य सा हो, कुछ रही नहीं जाए। यह भगवान की कृपा दृष्टि चारों तरफ दिख रही है, जो भी वस्तुएं हमारे आंखों के समक्ष प्रकट दिख रही है यह भगवान की कृपा है, और उनकी कृपा से यह दिख ही रही। और अंततः पूर्ण शुद्ध सिद्धांत पर अगर हम पहुंचे तो हम यह कह सकते हैं कि जो जो भी वस्तु यहां दिख रही है वह भगवान की अंशानुपंशभूति उनका ही शरीर से प्रकट हुआ चीज है। क्योंकि शुद्ध भक्ति की परिभाषा है भागवत के अंदर, गीता के अंदर या अन्य शास्त्रों से अगर चयन करके देखिए तो यही भक्ति की परिभाषा दी गई है कि किसी भी जीव में भगवान को देखो और भगवान में सभी जीवों को देखो, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी भी जीव के अंदर भगवान को देखो इसलिए उसको कष्ट मत दो, और भगवान के चरणों में सारे सृष्टि के सारे जीवों को देखो, ये भक्ति की आंख है। और इस दृष्टि से अगर हम चलेंगे तो इसी अध्याय की शुरुआत में ऐसे कथा लालू जी की दृष्टि द्वारा सुना रहे हैं प्रसंग, भागवत का जो आठवां अध्याय चल रहा है, इस अध्याय के छठे श्लोक के अंदर ही हिरण्यकश्यपु ने अपने मरने का संकेत कर दिया था। उसने प्रहलाद को कहा तुम कितने बड़ बड़ करके व्यर्थ और दिखाई को जो बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी जलराज के घर पहुंचा देता। तो टीकाकार तो लिखते हैं इस श्लोक के टीका है कि जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कहा कि मैं तुम्हें जलराज के घर पहुंचा दूंगा तो यह सुनिश्चित हो गया, भगवान ने इस बात को अपने हृदय में पकड़ लिया कि तुम्हें भक्त को जमराज के घर भेजेगा, मैं तुम्हें भेजूंगा। उसी समय उसकी आयु कम हो चुकी, क्योंकि उसने एक भक्त को भक्ति को पहचान नहीं पाया, कह रहे कि जमराज के घर भेज दे। भगवान की एकाकी भक्ति करने वाले कभी जम लोग तो नहीं जाते। इसलिए एकाकी भक्ति करने वाले भगवान के पास ही जाते हैं। आप सोचिए कि जिस भक्त के लिए भगवान स्वयं उनके बात को सत्यम बिना तो निजृत्य वासितम श्लोकों में पढ़ चुके हैं, ये अपने शुद्ध भक्त के बात को पुष्टि करने के लिए भगवान अंबे से प्रकट हो गए, तो क्या उस भक्त को जवाहर के घर भेजने के लिए हिरण्यकश्यपु के हाथ हवाले कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की भगवत्ता को अगर देखना चाहे तो सर्वत्र दिख रहे हैं, लेकिन देखने की आंख से केवल भगवान के संकेत प्रमाण किरणों से यह जगत प्रकाशित है, और उसी प्रकाश में यह जगत दिख रहा है। अगर उस प्रकाश को भगवान समेट ले तो कुछ भी नहीं दिखेगा। हम लोग पिछले वाले श्लोकों में पढ़ चुके हैं भगवान के हाथों से जब हिरण्यकश्यपु छूट गया तो देवता लोग जो बादलों के अंदर छिप करके इस युद्ध को देख रहे थे, देवता लोग एक तो पहले ही डरे हुए थे, बेघर हो गए थे, उनका डर नहीं लग गया था, हिरण्यकश्यपु ने कब्जा कर लिया था, उनको घर से निकाल दिया। लेकिन इस दृश्य को देख करके देवता लोग और भयभीत हो गए कि अब क्या होगा, वो तो भगवान के हाथों से भी छूट गया, होगा, उत्सुकता को होगा उस दृश्य को और देखने के लगे कि और क्या हमारा ही क्या करता है। केवल लीला दृष्टि मात्र से भगवान ने उसको खेल खेल में छोड़ा, लेकिन उस चतुर से छूटने के बाद हिरण्यकश्यप को समाया था एक जगह कि आसुरी स्वभाव है। नहीं तो भगवान के भगवत्ता को समझने के बाद कोई भी भगवान से टक्कर नहीं ले सकता। सृष्टि मेरे तेज से स्फुलिंग से ही प्रकट होती है, मतलब केवल स्फुलिंग का अर्थ यह है कि केवल सांकेतिक दृष्टि थोड़ा सा प्रकाश प्रदान करने से यह जगत प्रकाश पुंज बन चुका है। आकाश में ग्रहों का नक्षत्रों का प्रकाश भगवान के तेज का आंशिक प्रकट है। ग्रह है, नक्षत्र है, सूर्य है, ये केवल भगवान के आंशिक प्रकाश है। विभिन्न जीवों में अनेक अद्भुत गुण पाए जाते हैं, किंतु जितने भी अद्वितीय वस्तुएं पाई जाती हैं वे भगवान के तेज के केवल अंश मात्र है। कुछ भी जगत में दिख रहा है, समुद्र विशाल रूप में जल के रूप में पृथ्वी पर है, लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान के चरणों से निकले हुए एक बुंद के भी छींक बोलते हैं, जो सीख के अगले लोक के भाग में जितना जल अटता है उतना मात्र भी समुद्र में ये भगवान की तुलना। समुद्रों के उतार तरंगे तथा भगवान की सृष्टि के अनेक आश्चर्य उस समय नगण्य बन जाते हैं जब वे अपने विशेष रूप में इस जगत अवतरित होते हैं। उनके साकार स्वरूप यही थी जो गुणों की तुलना में सारी वस्तुएं तुच्छ है। भगवान की भगवत्ता से तुलना करने के लिए संसार की कोई भी वस्तु नगण्य की स्थिति में है, मतलब नहीं के बराबर है। इसलिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के ऐसे असुर हुए जिनको भगवान ने खेल खेल में मारा, तो भगवान को अपने आंसर को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर संकेत मात्र से क्या दृष्टि मात्र से इनको बंद कर सकते हैं भगवान, लेकिन यह अपने भक्तों की संतुष्टि जनक और असुर के भाव के हृदय को विदीर्ण करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है, अपने भक्तों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए आना पड़ता है। एक कवि ने लिखा है कि भगवान वैकुंठ में भी अगर अपने भक्तों के साथ हास परिहास और कुछ लीलाओं में अपने सखाओं के साथ अगर संगति में नहीं खेल करते, कुछ लीला नहीं करते, तो भगवान को भी सुनापन की अनुभूति होता है, वो अकेलापन का अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान को भी अपने मित्रों के साथ खेलने की शौक है। अब 15-20 मिनट समय बचा तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही पुण्य तिथि होता है वैष्णव की जन्मोत्सव से, मतलब आविर्भाव दिवस से ज्यादा महत्वपूर्ण साधुओं की तिरोभाव तिथि है, क्योंकि कितने शुद्ध भक्तों के जन्मदिवस का पता नहीं है, लेकिन तिरोभाव को महत्व देते हुए हमारे वैष्णव संप्रदाय में तिरोभाव तिथि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता का नाम था श्री वेंकट भट्ट, जो एक श्री संप्रदाय से दीक्षित थे, जिनके सुपुत्र हुए गोपाल भट्ट, और इनके ही प्रार्थना से सारे राम जी के स्वरूप से राधारमण जी का प्रकटीकरण हुआ। बाद में चैतन्य महाप्रभु की संगति से है, उनकी कृपा से है। जो वेंकट भक्त जी थे वो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से जुड़ गए और ऐसे सखा भाव के उपास्य हो गए, इतना दोस्ती हो गई वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु से। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो चतुर्मास किए थे, चतुर्मास में चार महीने तक वेंकट भट्ट के घर ही महाप्रभु के हुए, और यह स्वाभाविक प्रेम की उत्पत्ति हो जाते हैं। किसी के घर ज्यादा देर तक प्रभु का जाए तो पारिवारिक संबंध बन जाता है, एक दोस्ती जैसी हो जाती है। वैसे ही बात प्रभु से और वेंकट भट्ट से है, एक सत्य भाव की जो भावना उत्पन्न हो गई और आपस में दोनों मजाक हास पर हास करते थे। तो इस प्रकार के भक्तों के जीवन चरित्र को अगर हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, और यह तो चतुर्मास किया हुआ स्थान और वेंकट भट्ट का जो घर है श्रीरंगम क्षेत्र में है, हम लोगों ने दर्शन किया है वहां। एक छोटा सा जगन्नाथ सुभद्रा जी की मंदिर की स्थापना की गई है, उनके घर में गाय भी है, और जहाँ महाप्रभु अपना उचित वेंकट भट्ट को खिलाते हैं, जिनको गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया करते थे, स्थान भी है वहाँ, जो दर्शन करके आए। अब इनके जीवन चरित्र के विषय में थोड़ा सा पढ़े और ध्यान से आप सुनिए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के भाव विधि भाव हो सोगी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एक श्री वैष्णव ब्राह्मण वेंकट भट्ट के सुपुत्र दक्षिण भारत के श्रीरंगम में प्रकट हुए। एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके घर में चार माह तक ठहरे चतुर्मास के समय, और उस परिवार को गौड़ीय वैष्णव में परिवर्तित कर दिया। जो श्री संप्रदाय से जुड़े हुए लोग थे, महाप्रभु ने अपने संगति से इनको गौड़ीय संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया। उस समय मात्र एक छोटा सा बालक होते हुए भी गोपाल ने स्वयं भगवान की सेवा की। गोपाल जी छोटे बालक के रूप में थे, जब महाप्रभु वहां चार महीने तक वेंकट जी के घर में रुके हुए थे तो उस समय छोटे बालक थे, लेकिन उस समय भी वे महाप्रभु की सेवा उन्होंने किया, और उस सेवा को देख करके महाप्रभु अपना उचित जल्दी किसी को देते नहीं थे, लेकिन गोपाल जी को अपना उचित उन्होंने दिया और यह भी आशीर्वाद दिया कि तुम अच्छे साधु बनोगे, अच्छे भक्त बनोगे। श्री चैतन्य उनके प्रति अति स्नेहशील थे, वे उन्हें अपना विशिष्ट तथा एक आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया करते थे। साधुओं के पास इससे बढ़कर के और क्या बड़ा आशीर्वाद होगा। और मेरे महाराज तो यह कहा करते हैं कि अगर किसी को, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को अगर प्रणाम किया जाता है तो उसको यही आशीर्वाद देना चाहिए, अपने से छोटे लोगों को यही आशीर्वाद देना चाहिए कि कृष्ण मति रस्तु, कृष्ण में तुम्हारी मति लगी रहे। अब इससे बढ़कर के और कोई बड़ा आशीर्वाद की जरूरत नहीं, यही आशीर्वाद की याचना सबको करनी चाहिए। हे प्रभु, हे साधु, इतनी बड़ी कृपा जरूर कीजिए मेरे ऊपर, तुम भगवान के चरणों में लगे रहे, भगवान की भक्ति कर सकते। हम लोग प्रणाम करते हैं तुम्हारा चरण स्पष्ट रूप में करते हैं, कृष्ण मति रस्तु, कृष्ण में तुम्हारी मति लगी रहे। अब इससे बढ़कर तो कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, जुग जुग जियो, सुख से रहो, ये खाओ, फलो फूलो, सबसे अच्छा आशीर्वाद यही है कि हमारी मति, हमारी गति, हमारी सफर की यात्रा नहीं करनी चाहिए, मार्ग नहीं करनी चाहिए। किस प्रकार से हमारी भक्ति फलीभूत हो इसकी यात्रा करनी चाहिए। देखिए आप लोग फिर व्यक्तित्व से सिखा रहे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया गोपाल को आगे जाकर नहीं कहना गोपाल बड़े गोस्वामी पड़ेगा, आशीर्वाद दिए कि आचार बनो, अपने चार वास के पर्यंत चैतन्य महाप्रभु की विकट भट से घनिष्ठ मित्रता हो गई, जिसे कृष्णदास द्वारा सात वर्ष वर्णन के व्यक्त करते हैं कि परस्पर उन्मुक्त भाव से कथोपकथन करते हुए प्राय के दूसरे के साथ दूसरे के संग हास परिहास करते रहते थे, मजाक भी किया करते थे। अब सुनिए महाप्रभु और वेकट भट्ट से एक प्रश्न पूछते हैं जो गोपाल भट्ट जी के पिताजी थे, उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आप तो श्री संप्रदाय से लक्ष्मी जी के भक्त हैं, तुम्हारा प्रश्न पूछते हैं वेकट भट्ट से कि ये बताओ तो तुम्हारी जो लक्ष्मी है जिसकी उपासना करते हो, तुम्हारी लक्ष्मी क्या कारण है कि जाकर के ब्रज में तपस्या कर रहे। आप लोग देखे हैं वो स्थान ब्रज में कहाँ है, किस वजह से सुधीर तपस्या कर रहे हैं। आज तक सरस्वती जी तपस्या कर रही है भगवान कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं हो पाया क्योंकि ये नारायण की पत्नी है लक्ष्मी जी। एक बार की घटना का उल्लेख करते हैं महाराज स्वामी, जब महाराज से भगवान श्री कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां इतना को खोल रही है भगवान दर्शन को, तो भगवान ने कौतूहल पूर्वक अपना नारायण का स्वरूप बना करके गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए और उसी नारायण स्वरूप भगवान से गोपियां पूछती है कि हे नारायण आपने मेरे कृष्ण को देखा है, कृष्ण कहां है। यह है काफी भक्ति जाति जासना की उपासना, जिसके प्रति हमारी प्रेम की वासना हृदय में उदित हुई है उसको ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जहां चाह वहां रहा और जिसकी इच्छा करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए उस रास्ते पर चल लेंगे तो उस चीज को जरूर प्राप्त कर लेंगे। और यह भगवान के पूर्ण कृपा पर निर्भर करता है। भगवान ने कहा है भागवत के दशम स्कंध के अंदर 14वें अध्याय के अंदर कि जो भक्त प्रयास करता है उसको मेरी अनायास कृपा मिलती है, केवल उसका काम है प्रयास करे और मैं अनायास कृपा दूंगा। अब यह नहीं कब दूंगा कहां दूंगा कैसे दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। इतना भगवान बद्ध है अपने भक्त के भक्ति के प्रति। वे प्राय एक दूसरे के साथ हास प्रयास करते रहते थे। एक दिन विरोध भाव में चैतन्य महाप्रभु ने वेकट भट्ट से प्रश्न किया कि तुम्हारी पूजनीय लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ का आमोद प्रमोद तथा अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी। वे वृंदावन में जाकर ब्रज के एक बार बार मेरे स्वामी गोपाल का संग प्राप्त करने हेतु कठिन तपस्या कर रही है, किंतु महाप्रभु भक्त रूप में आए हैं तो भी आप स्वयं भगवान होते हुए भगवान कृष्ण की मतलब भगवत्ता को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहते कि मेरे भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी लक्ष्मी क्यों तपस्या कर रही है जाकर के व्रत के अंदर। तो देखिए भट्ट जी क्या उत्तर देते हैं, वो कहते हैं कि मैं इन रहस्यों को नहीं समझ सकता। लेखक ने कहा, परंतु आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण निश्चित ही मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं, आप ही बता सकते हैं इस रहस्य को। इस लीला के संकेत के ऊपर यह भाव प्रकट किया जा रहा है कि अगर लक्ष्मी स्वयं धर्म की रानी है, नारायण की पत्नी है, लेकिन ऐश्वर्य भाव से यह उपासना करती थी, इनके तरह जरूर अहंकार था कि मैं नारायण की पत्नी हूं, और बुद्धियों का जब तक ये अनुभवी नहीं बनी तब तक भगवान की भक्ति या प्रेमा भक्ति कर लीजिए, आज तक लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आज तक लक्ष्मी तपस्या कर रहे हैं। अगर ब्रज की भक्ति को प्राप्त करना है, भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना है, तो हमें गोपी अनुबद्ध की स्थिति में अपने को जाना पड़ेगा। अर्थात गोपियों के बताए हुए मार्ग का जब तक हम अनुसरण नहीं करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जब तक कभी लक्ष्मी को जब भगवान नहीं मिल पाए, जो नारायण की पत्नी है, उनको जब अपना प्रेमा भक्ति नहीं दिए, तो जो गोपियों के अनुगत में भक्ति नहीं करेगा उसको भगवान किसी की प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगी। यह संकेत कर रहे हैं इस प्रश्न के आड़ में कि जब तक के प्रेमी भक्ति के अनुबंध में तुम नहीं रहोगे, तब तक भगवान की सर्वोत्कृष्टता को नहीं समझ पाओगे। इसके पीछे कहने का तात्पर्य यह है महाप्रभु का कि जब तक तुम साधु की संगति में नहीं रहोगे, तब तक भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य गुण है, गौरव महाप्रभु ने कहा वे अपने माधुर्य प्रेम से सबका मन मोह लेते हैं। देखिए महाप्रभु भगवान कृष्ण की महत्ता व्यक्त कर रहे हैं। भगवान नारायण में केवल 60 दिव्य गुण है, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण है। हमारे देवी स्वामी इस पुस्तक में लिख रहे हैं, भगवान नारायण में केवल 60 दिव्य गुण है, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण है, और वे सब उनके अद्वितीय गुण माधुर्य से संकित है, संक्षिप्त है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुक्त कर लेते हैं, किंतु भगवान नारायण कभी भी ब्रज गोपियों के हृदय को आकर्षित नहीं कर सकते। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है आकृष्ट, आकृष्ट इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित कर लेता है उसको कृष्ण कहते हैं। ब्रज लीला में एक बार श्री कृष्ण भगवान नारायण का अच्छा सा वेश धारण कर गोपियों के समक्ष प्रकट हुए, जो उस समय श्री कृष्ण को खोज रहे थे। भगवान नारायण को देखकर गोपियां बोली, हे भगवान नारायण प्रणाम, श्री कृष्ण कहाँ गए, क्या आपने उन्हें देखा है। श्री कृष्ण के भगवत तत्व के ज्ञान से भी सहज भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का अनुभवन कर व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। शिव जी भी रास में तब प्रवेश किए जब गोपियों के सेवक बने। क्योंकि जब तक हम किसी भक्त की संगति प्राप्त करके उसके हाव भाव में हम मिलेंगे नहीं, तब तक भगवान की भगवत्ता को ठीक से नहीं समझ पाए। संगति संगे शक्ति कलयुग में, कलयुग में साधुओं की संगति में बहुत शक्ति है, जिसके माध्यम से भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्रुतियों ने गोपी भाव में श्री कृष्ण की आराधना की, उनका पदानुसरण कर उन्होंने गोपी देह प्राप्त कर रासलीला में श्री कृष्ण के संग नृत्य किया, किंतु लक्ष्मी देवी के रूप में अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखते हुए श्री कृष्ण के संग आनंद भोग करना चाहती थी, गोपियों के पदांगों का अनुसरण किए बिना कोई भी श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता। श्री प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा लेने के उपरांत गोपालगण वृंदावन चले आए तथा श्री गुप्त और सनातन गोस्वामी के प्रिय मित्र बन गए। उन्होंने 45 साल तक वृंदावन में भजन किया, जो अधिकांशतः राधा कुंड से संपन्न हुआ। आप लोग गोपालगण गोस्वामी के समाधि स्थल देखे हैं? कहाँ है? राधा और मंदिर के दीदी के पीछे ही, मतलब चला हुआ उनका तीर्थ यात्रा करते हुए 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई। उत्तर काल में दामोदर शिला ने स्वयं को रव्य राधा रमण अत्याधुनिक विग्रह के रूप में प्रकट किया। सन 1542 से श्री राधा रमण जी का पूजन शुद्ध भक्ति भाव से शास्त्र विधि अनुसार नियम निष्ठा पूर्वक चला आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने भोपाल भट्ट को एक ग्रंथ रचने का आदेश दिया, जिससे वैदिक भक्ति की उपेक्षा तथा सर्व प्रेम रसों का प्रचार को रोका जा सके। वह ग्रंथ है हरि भक्ति विलास। ऐसे वह रूप गोस्वामी हरि सनातन गोस्वामी की रचना है, लेकिन उसकी रियो रूपरेखा की जो बनावट है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पहले उसको संकलित किया और विस्तार रूप से सनातन गोस्वामी ने उसका वर्णन किया, उसके अंदर विस्तार रूप से लिखा। श्री सनातन गोस्वामी के समर्थन से उन्होंने हरिभक्ति विलास का संकलन किया, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विधियों एवं भक्ति साधन अभ्यास की व्याख्या करने वाला प्रमाणित ग्रंथ है। उन्होंने सत्क्रिया दीपिका नसरी जी गोस्वामी प्रतिशत संदर्भ की रूपरेखा की रचना की। श्रीमती राधा रानी की अष्टमंजरियों में से एक गुण मंजरी के रूप में उनकी दिव्य सेवा में रत रहते हैं। उनकी समाधि राधा रमण मंदिर परिसर में अर्चा विग्रह की प्रकट स्थली के पीछे अवस्थित है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ को दीक्षा दी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयु पर्यंत राधा रमण जी की सेवा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य तथा अनेक अन्य निष्ठावान वैष्णवों को भी दीक्षा दी। निष्ठावान भक्तों की संगति में रहकर के हम निष्ठावान भक्त बन सकते हैं, तो हम लोग भी गोपाल भट्ट गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह निष्ठा और प्रेम और भगवान की भक्ति अपने हृदय में भी उत्प्रेरित हो गए और भगवान की भक्ति के पथ पर चल करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सके। हरे कृष्ण ग्रंथ भागवत की श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी।